ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रन्थना श्रीमद्भागवतं स्कन्दी अध्याय 12 श्लोक संख्या 47 46 मैं पढ़ता हूँ। अन्वेक्षिति त्रयीवार्ता दण्डनीति तथैव च एवं व्याहरत यच्चासन प्रणवो यश दहरतः। तर्क शास्त्र विज्ञान जीवन के वैदिक लक्ष्य कानून तथा व्यवस्था आचार संहिता तथा भू भुव स्वः नामक विख्यात मंत्र ये सब ब्रह्मा के मुख से प्रकट हुए और उनके हृदय से प्रणव ओंकार प्रकट हुआ। तशोष्णी गासिलोमभ्यो गायत्री चतुर्थो विभो त्रिश्लोमासस्नोष्टु जगत्यस्त प्रजायते। तत्पश्चात सर्वशक्तिमान प्रजापति के शरीर के रोमों से उष्णिक अर्थात साहित्यिक अभिव्यक्ति की कला उत्पन्न हुई। प्रमुख वैदिक मंत्र गायत्री जीवों के स्वामी की चमड़ी से उत्पन्न हुआ। त्रिष्टुप उनके मांस से, अनुपुष्ट उनके शिरा से तथा जगती छंद उनके हड्डियों से उत्पन्न हुआ। मज्जाया पंक्ति उत्पन्ना बृहति प्राण तो भवत्। पंक्ति श्लोक लिखने की कला का उदय अस्थि मज्जा से हुआ और एक अन्य श्लोक बृहति लिखने की कला जीवों के स्वामी के प्राण से उत्पन्न हुई। तो ये श्लोक मेरे पीछे दोहराइए जो बोर्ड पर है। स्पर्शस्तस्याभव जीव सरोदेह उदारतः उष्माणमिन्द्रियाण्याहुर् अन्तस्था बलमात्मनः स्वरा सप्त विहारेण भवन्ति स्म प्रजापते। स्पर्शतश्चाभवज्जीव सरोदेह उदारतः उष्माणमिन्द्रियाण्याहुर् अन्तस्था बलमात्मनः स्वरा सप्त विहारेण भवन्ति स्म प्रजापते। स्पर्श क से मत के अक्षरों का समूह उसका अभवत हुआ जीव आत्मा स्वर स्वर देह उनका शरीर उदारतः व्यक्त किए जाते हैं। उष्माणम् श श स तथा अ अक्षर इंद्रियाणि इंद्रिया आहु कहलाते हैं। अंतस्ता य र ल तथा व ये अंतस्ता अक्षर हैं। बल शक्ति आत्मनः उसका स्वरा संगीत सप्त सात विहारेण इंद्रिय कार्यकलाप के द्वारा भवन्ति स्म प्रकट हुए प्रजापते जीवों के स्वामी का। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की अनुवाद इस प्रकार से है। ब्रह्मा की आत्मा स्पर्श अक्षरों के रूप में उनका शरीर स्वरों के रूप में उनकी इंद्रिया उष्मा अक्षरों के रूप में उनका बल अंतस्था अक्षरों के रूप में और उनके इंद्रिय कार्यकलाप संगीत के सप्त स्वरों के रूप में प्रकट हुए। तात्पर्य संस्कृत भाषा में 13 स्वर तथा 15 व्यंजन हैं। स्वर हैं अ आ ई उ ऊ ए आई ओ तथा औ एवं व्यंजन हैं क ख ग घ आदि। व्यंजन में प्रथम 25 अक्षर स्पर्श कहलाते हैं, 4 अंतस्थ भी हैं। उष्मों में से 3 श श स तालव्य मूर्धन्य तथा दंत कहलाते हैं। संगीत के स्वर हैं सरे गम पद नी, ये ध्वनियां मूलतः शब्द ब्रह्म अर्थात आध्यात्मिक ध्वनि कहलाती हैं। अतएव ये कहा जाता है कि ब्रह्मा की सृष्टि शब्द ब्रह्म के अवतार के रूप में महाकल्प में हुई, वे शब्द ब्रह्म है। अतएव वैदिक वाङ्मय की ध्वनियों की भौतिक व्याख्या करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वेदों का उच्चारण उसी रूप में किया जाना चाहिए जिस रूप में वे है, यद्यपि वे प्रतीक रूप में हमें भौतिक रूप से ज्ञात अक्षरों द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं। अंततः गत्वा कुछ भी भौतिक नहीं है, क्योंकि प्रत्येक वस्तु का उद्गम आध्यात्मिक जगत से होता है। इसलिए भौतिक जगत उचित अर्थों में मोह या भ्रम कहलाता है। जो लोग स्वरूप सिद्ध है उनके लिए आत्मा के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है। ओम अज्ञान निरंदश ज्ञानांजना शलाकया चक्षुर्मीलितमेन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य महाभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरूपेश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो कई दिनों से हम सुनते ही जा रहे हैं ब्रह्मा का जो उत्पत्ति करण का जो प्रभाव है वो कम नहीं हो रहा है। हम इस संसार में कुछ चीजें प्रकट करते उत्पन्न करते हैं, जन्म देते तो थक जाते हैं, हाँ, लेकिन यहाँ ब्रह्मा एक के बाद एक नॉन स्टॉप क्रिएशन करते जा रहे हैं। क्यों कर रहे हैं ब्रह्मा इतनी सारी क्रिएशन, क्यों कर रहे हैं कौन बताएगा? इतनी सारी सृष्टि ब्रह्मा कर रहे हैं उसका एक में उद्देश्य है, और वो उद्देश्य क्या है? जो भगवान कृष्ण का उद्देश्य है वही उद्देश्य ब्रह्मा का है। इसी कारण से ब्रह्मा आचार्य है। कौन है? आचार्य है। हाँ, शुद्ध भक्त कौन है? जो इंटेंशन कृष्ण का है वही इंटेंशन जिस भक्त का है इस भौतिक जगत में जीवों के उद्धार के लिए, वो कौन है? शुद्ध भक्त है। तो देखा जाए भगवान कृष्ण अत्यधिक चिंतित रहते हैं इस भौतिक जगत के बद्ध जीवों को अपने धाम वापस ले जाने के लिए। इसी कारण से भगवान हमेशा कुछ ना कुछ प्रयास करते रहते हैं। हाँ, किसी पहाड़ को भेज देते हैं उद्धार करने के लिए। कौन से पहाड़ को भेज दिया? गोवर्धन। किसी पेड़ को भेज देते हैं तुलसी। किसी नदी को भेज देते हैं चरणामृत के रूप में। कौन? गंगा। तो इतना प्रयास कृष्ण कर रहे हैं इस जगत के जीवों को वापस ले जाने के लिए। तो ऐसे भगवान रुकते नहीं है, एक के बाद एक प्रयास कर रहे हैं वापस ले जाने के लिए। तो वैसे ही जो ब्रह्मा है वो इतनी सारी सृष्टि कर रहे हैं अलग अलग चीजों की, उसका उद्देश्य है कि इस भौतिक जगत के जीवों को सुविधा प्रदान करे जिसके द्वारा वो किसको जान सकते हैं? परम सृष्टा। कौन? कृष्ण। सर्व कारण कारण उनको जानने के लिए इतनी सारी सृष्टियां हैं। आजकल वो अक्षरों को जन्म दिया है उन्होंने इस श्लोक में, इससे पहले कई चीजों को उन्होंने प्रकट किया था। तो भगवान का अल्टीमेट आशीर्वाद है श्रीमद् भागवतम। क्या है? श्रीमद् भागवतम। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि जड़ जगत में जो जीव है वो शब्द के द्वारा बंध जाता है। हिरण, हिरण क्या सुनती है? बहेलिया मधुर गीत का उच्चारण करता है, सुमधुर संगीत की ताम छेड़ देता है, जिसके कारण बहेलिया सुनकर क्या होगा, बहेलिया गाता है तो हिरण उस मधुर ध्वनि को सुनकर आकृष्ट होकर शिकार बन जाती है। उसी प्रकार से इस सांसारिक जगत में जो जीव है शब्द के द्वारा बंधा हुआ है। हम भी कोई हम किसी को वचन देते हैं, बंध जाते हैं, जाऊंगा नहीं जब तक मंगल आरती खत्म नहीं होगी तब तक, है ना। किसी को वचन देते, गुरु को वचन देते हैं ना, शब्द क्या कि अभी मैं दीक्षा ग्रहण कर रहा हूं और 16 मालाओं का जप करूंगा, तो शब्द के द्वारा क्या होगा, व्यक्ति बंध गया है। इस संसार में भी हम अपने अलग अलग संबंधों में बंध जाते हैं शब्दों के माध्यम से, और वास्तव में सुबह से लेकर शाम तक हम केवल इन जड़ जो शब्द हैं उनकी चर्चा करने में व्यस्त रहते हैं। तो इसलिए अरे बहुत साउंड को कम मत करो, बहुत ज्यादा कम नहीं करना। हरे कृष्णा। हाँ ठीक है, शब्द की चर्चा हो रही है, शब्द रोका जा रहा है। वैसे इसको ठीक करना होगा आपको, इसका बेस ठीक नहीं है, बेस बढ़ाना होगा। तो इस जगत में भी हम शब्द के द्वारा क्या हो रहे हैं, बंध रहे हैं। इसलिए वेदों में एक शब्द आता है, वेदों में ये वर्णन आया है अनावृत्ति शब्द, ये स्लोगन है वेदों का कि अनावृत्ति, अनावृत्ति का अर्थ है बारंबार रिपीट करना किसी चीज को, उसको अनावृत्ति कहते हैं। अनावृत्ति शब्द, शब्द का रिपीटेशन करने से जिस शब्दों के द्वारा इस संसार में आप बंध गए हो उन्हीं शब्दों के द्वारा आप क्या हो जाओगे, इस संसार से मुक्त हो जाओगे। इसलिए हमें चैतन्य महाप्रभु ने सिखाया कीर्तनिया सदा हरे, कीर्तन करो। किसका कीर्तन करो? उनके परम नाम का, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम, बारंबार उसी नाम ध्वनि का उच्चारण करो रिपीटेडली। हाँ, बारंबार हम उसी मंत्र को क्या करते हैं, दोहराते हैं, और इस दोहराने से क्या हो रहा है, उसका प्रभाव हमारी इस कल्मश युक्त चेतना पर पड़ रहा है, जिसके कारण हमारे जो कल्मश से भरी हुई चेतना है वो उस आध्यात्मिक जो तरंग है, वो शब्द ध्वनि है, हाँ जो दिव्य शब्द ध्वनि है, जिसके कारण हमारी चेतना क्या हो रही है, शुद्ध हो रही है। इसलिए प्रभुपाद कहते थे ट्रांसेंडेंटल साउंड वाइब्रेशन, ये जो ध्वनि तरंगे हैं ये दिव्य है। इसलिए प्रभुपाद कभी हिंदी में भी प्रवचन देते थे तो अपने अमेरिकन शिष्यों को कहते थे बैठो, समझ में नहीं आ रहा है, वो कहते थे चलेगा, क्योंकि ये ध्वनि कोई साधारण नहीं है, ये दिव्य है, आध्यात्मिक ध्वनि है, ये कानों में जाएगी तो ये शुद्ध करेगी। इसलिए साउंड का बहुत महत्व है, श्रवण का बहुत महत्व है। प्रभुपाद कहते हैं किसी जगह आग लग जाए, कोई व्यक्ति सो रहा है, उसकी सारी इंद्रियां बंद रहती हैं, और वो जो सोया हुआ व्यक्ति वो किसी भाषा का हो और जो उठाने वाला है वो किसी और भाषा का हो, वो अपनी भाषा में जो मर्जी बोल दे वो व्यक्ति जग जाएगा और समझ जाएगा, हाँ कि आग लग गई मुझे जाना है। आंखें खुलेगी तो क्या होगा, समझ में आएगा कि मेरे इर्द गिर्द आग है, फायर है। तो उसी प्रकार से ये जो शब्द ध्वनि है जिसके द्वारा हम इस जगत में बंधे हुए हैं उससे हम मुक्त हो सकते हैं यदि इस शब्द ध्वनि का क्या करते हैं, हम आश्रय ग्रहण करते हैं। और इसी कारण से ये श्रीमद् भागवतम क्या है, इस जड़ जगत के बद्ध जीवों के लिए सर्वोच्च आशीर्वाद है। इसलिए भागवतम को कृष्ण का शब्दावतार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शब्दावतार। हाँ, यह भगवान का वैदिक साहित्य जो अवतार है, लिटरली इनकार्नेशन, हाँ, श्रीमद् भागवतम को कहा जाता है। तो इस प्रकार से ब्रह्मा ने इतनी सारी चीजों का उत्पत्ति की, और ये इसलिए की है कि हम जो जीव है इस सारी चीजों से गाइडेंस प्राप्त कर सकते हैं, लाभ प्राप्त कर सकते हैं, और जिसके द्वारा कृष्ण की ओर हम जा सकते हैं। क्योंकि जिस प्रकार की दया की भावना कृष्ण के हृदय में है, कृष्ण को कहा जाता है, हे कृष्ण करुणा सिंधु, कृष्णा आप तो करुणा के सागर हो, तो उसकी एक बिंदु उनके भक्तों के हृदय में होती है। तो ब्रह्मा जैसे जो बड़े भक्त हैं, जो हमारे संप्रदाय के आचार्य हैं, ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय के, तो जो दया कृष्ण के हृदय में है, उसी प्रकार की दया ब्रह्मा जी के हृदय में है। और जिस कारण से ब्रह्मा ने सृष्टि की, बल्कि जब भगवान ने आदेश दिया था कि आप जगत के जीवों को बंधने के लिए सृष्टि करो, तुरंत ब्रह्मा के आंखों से आंसू बहने लगे। दूसरे स्कंद में आता है, तीसरे स्कंद में शायद गया वो श्लोक, आंसू बहने लगते हैं और बहुत दुखी हो जाते हैं। ब्रह्मा कहते हैं कि मुझे सेवा भी मिली, तो क्या करने की, जीवों को और आदि की संसार बंधन में बांधने की। तो इस प्रकार से जो ब्रह्मा है, हाँ, इस संसार में हरिदास ठाकुर के रूप में आते हैं, आते कि नहीं आते, इसलिए हरिदास ठाकुर का दूसरा नाम है ब्रह्म हरिदास। तो हरिदास ठाकुर के रूप में आते हैं और सारे जगत के जीवों को ये सिखाते हैं कि ये जो दिव्य ध्वनि है, शब्द ध्वनि, उसका आश्रय ग्रहण करो। तो हरिदास ठाकुर के रूप में आकर ब्रह्मा स्वयं भगवान के सर्वोत्तम नामों का उच्चारण करते हैं, और इतना अधिक उस ध्वनि को, हरि नाम को पकड़ते हैं कि जब उनको 22 बाजारों में पीटा जा रहा था ब्रह्मा को नहीं हरिदास ठाकुर को, तो हरिदास ठाकुर कहते हैं, खंड खंड होये जदि जाओ मोर प्राण, मेरे शरीर के छोटे छोटे टुकड़े हो जाए, मेरा प्राण चला जाए, लेकिन क्या नहीं करूंगा, तबुतना वदने आमी छाड़ी हरि नाम, इतना सब हो जाए तभी भी अपने मुख से इस हरि नाम को नहीं छोड़ूंगा। और हमारी बिल्कुल उल्टी दशा है, हाँ, वो वेट करते मंगल आरती खत्म होने के बाद का जो समय है वो सबसे, पूरे दिन का सबसे डरावना समय है, 5 बजे से 7 बजे तक है ना, बड़े बड़े लोगों की उसमें हालत खराब हो जाती है, हालत खस्ता हो जाती है ना, 5 से 7, तो उसे पता चलता है कि हमारी स्थिति, हमारे हृदय की, हमारे आध्यात्मिक जीवन की स्थिति क्या है उस समय, या हमारे जीवन में थोड़ा बुखार आ जाए, या कोई हमें डांट दे, तो सबसे पहले कोई हमारे जीवन से साइड में हो जाता है उस दिन के लिए, तो वो कौन है, जपमाला। बेचारे जपमाला ने क्या बिगाड़ा है। प्रभुपाद एक बार जा रहे थे, प्रभुपाद ने देखा किसी की जपमाला लटक रही है ऐसे, प्रभुपाद ने कहा, अरे किसकी माला लटक रो रही है, हाँ, बिड बैग इज क्राइंग। प्रभुपाद कहते हैं किसकी माला वहां रो रही है, ये नहीं कहा कि लटक रही है। तो भक्त था, कहते प्रभुपाद मेरे, प्रभुपाद कहते हैं सारे चीजों को फास्टिंग करवाओ तो चलेगा, तुम जितना मर्जी उपवास करो चलेगा, लेकिन एक भी दिन जप माला का फास्टिंग नहीं होना चाहिए, एक भी दिन जप माला ने उपवास नहीं करना चाहिए, प्रतिदिन क्या होना चाहिए जप माला के ऊपर, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ऐसे हरिदास ठाकुर हरे नाम को अपना लाइफ एंड सोल, प्राण आधार बना लेते हैं, हाँ, ऐसे थे हरिदास ठाकुर। तो इस प्रकार से वास्तव में जो ब्रह्मा है वो सही में आचार्य है, वो सही में साधु है, वो सही में गुरु है, वो सही में ऋषि है, मुनि है, और कितने शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसे है ब्रह्मा। तो ब्रह्मा को इतना हल्का मत लीजिए, हम सोचेंगे कि वो अपने पुत्री के पीछे भाग गए, अरे काहे का ब्रह्मा, ऐसे सोचेंगे, अपराध कर बैठेंगे, ब्रह्मा जैसा व्यक्तित्व नहीं है, वो हमारे संप्रदाय के संस्थापक आचार्य हैं। इसलिए श्रील प्रभुपाद श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद का जो चौथा श्लोक है, जिस श्लोक से भागवतम की शुरुआत होती है, उस श्लोक में प्रभुपाद वास्तविक ऋषि कौन है, वास्तविक मुनि साधु कौन है, वास्तविक गुरु या आचार्य कौन है, उसके बारे में वर्णन करते हैं। बल्कि भागवतम के प्रथम स्कंद के जो शुरुआत के तीन श्लोक हैं, वो श्रीमद् भागवतम का मंगलाचरण है। हम मंगलाचरण गाते ना, ओम अज्ञान अनेन में भी हो तभी भी सही गाएंगे हम, पता है आपको, क्योंकि रट रट के क्या हो गए, परफेक्शन प्राप्त किया है। हाँ, ये होना चाहिए। तो वैसे ही मंगलाचरण का मतलब है कि जिसमें हम आह्वान करते हैं, किस चीज के लिए आह्वान करते हैं, भगवान और उनके भक्तों के कृपा या आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए मंगलाचरण को गाया जाता है, और मंगलाचरण से हम आशीर्वाद की याचना करते हैं, एक भिक्षा मांगते हैं, जिस प्रकार से एक याचक बड़े दाता के प्रति भिक्षा की याचना करता है। तो उसी प्रकार से श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के शुरुआत के जो तीन श्लोक है वो मंगलाचरण है, और जो चौथा श्लोक है भागवतम के पहले स्कंद के पहले अध्याय में, वो वास्तव में भागवतम की शुरुआत है, जिसमें हंस वर्णन करते हैं व्यासदेव। वो लिखते हैं, निमिषे अनिमिषे क्षेत्रे ऋषया शौनकादया यत्र स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासतः। तो ये जो श्लोक है, इसके तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद ने ऋषि तत्व एक्सप्लेन किया है। कई प्रकार के तत्व है ना, विष्णु तत्व, शक्ति तत्व, गुरु तत्व, बहुत सारे तत्व हैं। तो उसमें एक तत्व कौन सा है, ऋषि तत्व है। तो हम प्रयास करेंगे कि ऋषि तत्व क्या है उसको आज समझने के लिए, जितना समय हमारे पास है उतने समय में। तो उस श्लोक में वर्णन आता है निमिषे अनिमिषे क्षेत्रे। वो कहते हैं नैमिषारण्य में अनिमिष, अनिमिष मतलब विष्णु का एक नाम है जो कभी अपनी पलके झपकाते नहीं है। तो ऐसे पलके न झपकाने वाले भगवान को नैमिषारण्य बहुत प्रिय है। उसमें शौनक आदि ऋषिगण क्या कर रहे थे, एक बड़े फंक्शन उन्होंने अरेंज किया था, सत्र। कौन सा सत्र, स्वर्गाय। स्वर्गाय का मतलब है जो जिसकी महिमा स्वर्ग में भी गाई जाती है, ऐसे कौन है, कृष्ण है। तो भगवान कृष्ण की महिमा स्वर्ग में गाई जाती है, ऐसे भगवान को संतुष्टि प्रदान करने के लिए या प्रसन्न करने के लिए शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने एक बड़ा सत्र अरेंज किया नैमिषारण्य में, जो भगवान विष्णु को, जिनकी आंखें कभी वो झपकती नहीं है पलके, हाँ, उनके हेतु उन्होंने अरेंज किया था। और कितने सालों के लिए, सहस्र सम आसतः, हजारों सालों के लिए, 1,000 साल के लिए। फिर किसके लिए किया, किसके हित के लिए, तो सूत्र गोस्वामी कहते हैं लोकाय, इस बद्ध जीवों के हित की कामना करते हुए शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने एक यज्ञ सत्र शुरू किया। तो इसके तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं वास्तव में ऋषि कौन है या ऋषि किसको कहते हैं, ऋषि तत्व क्या है, ऋषि के लक्षण बताते हैं। हाँ, जैसे हम ब्रह्मा सृष्टि कर रहे हैं, ब्रह्मा असली में ऋषि हैं। तो वहां हमें पता है ऋषि बहुत सारे हैं, देवर्षि, ब्रह्मर्षि, महर्षि, नारद है, व्यास है, शुका है, देवल, गौतम, भरद्वाज, मैत्रेय, कितने सारे हैं, विश्वामित्र आदि हैं। और बल्कि देखा जाए भारत तो ऋषियों का स्थान है। जब मॉरिशस के भक्त आते थे तो मैं उनको बोलता था शुरुआत में, वो मॉरिशस वास्तव में ऋषियों का स्थान है, मौर ऋषि, इसलिए मॉरिशस है इसका नाम, कि जहां अधिक ऋषि निवास करते हैं उसको मॉरिशस कहा जाता है। तो वैसे ही भारत ऋषियों का स्थान है। और ऐसे नहीं कि पहले ऋषि मुनि थे, अभी के समय में ऋषि मुनि नहीं है, अभी भी अस्तित्व में है ऋषि मुनि हमारे बीच में। अभी बचपन में हमें ऋषियों का मतलब पता था, जब टेलीविजन देखते थे या फिर कॉमिक्स पढ़ते थे तो उसमें देखता था कि ऋषि का मतलब है जिसकी बड़ी बड़ी दाढ़ी हो, ऊपर चूड़ा हो और रुद्राक्ष यहां यहां फिर यहां में और हाथ में कमंडल, उतना ही नहीं जप करने के लिए एक डंडा जो ऐसे रखेगा और फिर क्रोध में आ जाए तो शाप देने के लिए तैयार, इसको क्या कहते हैं ऋषि। आया बचपन से हमें पता था ऋषि मीन्स ये सब चीजें जिसके पास हैं, जिससे वो क्या है भरा हुआ इन चीजों से, हाँ तो वो वास्तव में ऋषि हैं। लेकिन वास्तव में श्रील प्रभुपाद कहते हैं इसको ऋषि नहीं कहते, प्रभुपाद ने ऋषि का कोई और डेफिनेशन दे दिया। प्रभुपाद कहते हैं ऋषि का मतलब है जिसके, प्रभुपाद उस श्लोक के तात्पर्य में ऋषि के तीन लक्षण बताते हैं। पहला लक्षण है कंपैशन एंड कंसर्न, कि सदैव जन सामान्यों के हित के लिए या जन सामान्य लोगों का हित करने के लिए जो उत्साहित रहता है या जिसको जनमानस के हित की चिंता है वो वास्तव में ऋषि है। तो इस संसार में तो हर कोई बड़ा उत्सुक है, किसके लिए उत्सुक है, केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति करने के लिए। राजनेता भी बड़े जो नेतागण हैं वो भी बड़े उत्सुक रहते हैं, हाँ समाज का कल्याण करने के लिए नहीं, वोट हासिल करने के लिए जहां तहां पहुंचेंगे और जहां तहां सबसे राखी बनवाएंगे रक्षाबंधन में, क्यों वोट चाहिए। और जिस प्रकार से उनके फॉलोअर्स कहें उस इलेक्शन के समय में सब कुछ करने के लिए तैयार है, मानो उनके जैसा कोई हितेशी नहीं है इस संसार में। तो लेकिन उसके पीछे क्या है, स्वार्थ है। इवन पुत्र भी है, पुत्र भी जब आगे पीछे घूमते रहते हैं, हाँ जब पिता वृद्ध हो जाता है तो सारे मन में चिंता रहती है कब ये बूढ़ा मरेगा, सारा धन मेरे पास आ जाएगा, मैं और मेरी पत्नी क्या करूंगा उसको यूज करूंगा। अब देखो वाल्मीकि जो रत्नाकर डाकू नारद ने कहा जाओ इतने पाप कर रहे हो, अपने पत्नी बच्चों से पूछो कि वो लेंगे कि नहीं, वो पत्नी और बच्चों ने मना कर दिया नहीं लेंगे हम आपका पाप। तो इस संसार में हर कोई उत्सुक है लेकिन अपने स्वार्थ की तैयारी के लिए। हाँ लेकिन देखा जाए एक साधु थे, उनका एक शिष्य था, वो शिष्य जानना चाहता था कि मेरे माता पिता पत्नी कितना प्रेम करते हैं मुझसे। साधु ने कहा एक दवाई देता हूँ, वो दवाई खा लो तुम बिल्कुल मरे हुए व्यक्ति के जैसे हो जाओगे। उसने दवाई खाई उस युवक ने, हाँ तो दवाई खाते बिल्कुल ऐसे लेट पड़ा, कोई सांस नहीं चल रही है, तो माता पिता पत्नी सब आ गए और कहा कि ये क्या हो गया। हाँ तो साधु ने कहा इसको जीवित कर सकता हूं लेकिन इसकी जगह किसी और को मरना पड़ेगा। अभी जैसे कहा इसकी जगह कोई मरना पड़ेगा तो उसकी माँ कहती है कैसे, मैं तो ये जो पति अभी बूढ़े हो गए हैं उनकी इतनी सेवा करनी पड़ेगी, खांसते रहते हैं, चलना नहीं जाता, उन्हें उठा नहीं जाता, बाथरूम भी पकड़ के ले जाना पड़ता है, इनकी सेवा करूंगा, पत्नी का परम धर्म है, किसकी सेवा, पति की, मैं मरूंगी नहीं। पत्नी अभी उस जो मरा था उसको कहा, उसकी पत्नी को बोला, पत्नी साक्षात अर्धांगिनी का रूप है, हाँ वो अर्धांगिनी को बोला कि आप मरने के लिए तैयार हो जाओ। तो उन्होंने कहा छोटे छोटे नन्हे से बच्चों को वो जन्म दे के चले गए हैं, अभी उनका पालन पोषण माँ नहीं करेगी तो कौन करेगा, इसलिए मैं नहीं। तो ऐसे सबसे जब कहा तो वो कहता है, और जो लेटा हुआ था उसको ये सुविधा दी थी कि वो सारा संवाद सुन सकता है, वो सुन रहा था कितना प्रेम उमड़ रहा है मेरे पत्नी का, मेरे माँ का, मेरे बाप का, मेरे सब संबंधियों का। तो ये साधु कहता है मैं मर जाता हूं इसकी जगह, मैं मर जाता हूं। हाँ तो साधु तैयार हो जाता है लेकिन कोई और तैयार नहीं होता, इसलिए साधु क्या कहा है, प्रभुपाद कहते हैं दूसरों के हित के लिए सदैव उत्सुक रहता है। इस संसार में सारे स्वार्थी हैं, गाय जब तक दूध देती है तब तक वो क्या है, गौ सेवा है और गौशाला है। गाय जैसे दूध देना बंद हो गई कोई गौशाला एग्जिस्ट नहीं करेगी और कोई गौ सेवा
नहीं होगी। इवन देवतागण भागवत में कहते हैं, इन सब की बात छोड़ी दो, इस संसारिक जगत के लोगों की, इवन जो देवतागण है वो स्वार्थी हैं। इंद्र को पकड़े, एक साल पूजा नहीं की, हंगामा खड़ा कर दिया ब्रज में। इतने सालों तक ब्रजवासी पूजा कर रहे हैं, तब तक समस्या नहीं आई, एक बार नहीं की तो क्या बिगड़ेगा, सहन कर सकता है, स्वार्थ मेरी पूजा नहीं है। इसलिए भागवतम कहता है कि देवता गण भी स्वार्थी हैं, जब तक उनको ऑफरिंग्स देते रहो तब तक वो आपके हैं, आपको संतुष्ट करेंगे, जैसे उनका उपहार बंद कर दो वो आपके शत्रु हो जाएंगे। इस प्रकार से देव उपासक भी, देवता गण भी और देवताओं की पूजा करने वाले भी। प्रभुपाद एक उदाहरण देते हैं कि काली के मंदिर में गया और उसकी इच्छा पूर्ति करने के लिए काली को कहा कि मैं आकर आपको बकरा काट के दे दूंगा, बकरा काटूंगा, ऑफर करूंगा। अभी एक हफ्ता हो गया वो आता था मंदिर दर्शन करने, काली जी कहते थे अरे क्या एक हफ्ता बीत गया, जो तुमने बोला था इच्छा पूर्ति तो हो गई, हाँ आप मन्नत पूर्ति हो गई, जो मुझे देना था वो दिया नहीं अभी तक। इधर काली अभी आजकल महंगाई बहुत बढ़ी है, प्रभुपाद के प्रवचन में कहते हैं कि बकरा बहुत महंगा है, वह हम अर्पित नहीं कर सकता, बाद में सोचता हूं थोड़ा महंगाई कमी हो जाए। काली जी कहते चलो मुर्गी तो दे दो अगली बार, बकरा नहीं तो। तो अगली बार वो आता है, काली जी मुर्गी भी मांगती हैं, तो वो बहाना बनाता है। फिर तीसरी बार आता है तो जैसे काली ने बोला अरे क्या हो गया, तो उपासक देवताओं का कहते हैं कि ठीक है आपके आसपास इतनी सारी मक्खियां घूम रही हैं, उसमें से एक झपट लो और उसी को ही मेरी ऑफरिंग समझ लो। तो प्रभुपाद कहते कि इस प्रकार से देवताओं के उपासक भी क्या हैं, स्वार्थी हैं। तो इस संसार से हर एक व्यक्ति बड़ा उत्सुक है, हाँ बहुत नाच रहा है, लेकिन किसके लिए, अपने स्वार्थ की पूर्ति करने के लिए। एक बार एक तालाब में मछली थी, मदर थी और उसकी छोटी सी बेटी थी, बेटी मीन्स क्या है, एक फीमेल फिश और उसकी बेटियां। तो वो जो मछली है छोटी सी, वो अपनी माँ को, दूसरे मछली को पूछती है अपनी माँ को कि हे माँ हम पृथ्वी में क्यों नहीं रह सकते। तो वो जो मछली थी माँ, माँ मछली, वो कहती कि देखो बेटा ये देखो ये गोल्ड फिश है, यहाँ देखो ये ब्लू फिश है, कई प्रकार के फिश होते ना, कहते हैं पृथ्वी में सारे सेल्फिश है, इसलिए पृथ्वी में हमारे लिए जगह नहीं है। हाँ तो सेल्फिश का मतलब है कि सारे क्या है, स्वार्थ से भरे हुए हैं और अपने स्वार्थ की पूर्ति करने के लिए तत्पर है। हाँ थोड़ा बहुत कोई व्यक्ति अपने स्वार्थ से बाहर आ सकता है, पहले तो हम दो और हमारे दो, उससे बाहर सोचेगा पड़ोस से भी अपना ही है, हाँ उसका थोड़ा विस्तृत हो जाता है। प्रभुपाद कहते हैं उससे आगे बढ़ता है मोहल्ला, वो कहते हैं चलो हमारा गांव है, फिर हमारा देश राज्य है, हाँ फिर कोई थोड़ा सा बड़ा हृदय वाला हो तो वो सोचेगा कि हमारा देश है, और उससे बड़ा कौन सोचेगा, बहुत कम सोचते मेरा देश है, उससे कम सोचते कि पूरा जगत हाँ मेरा है, और उससे भी अत्यधिक ना के बराबर है सो जो सारे जीवों के बारे में सोचते हैं, सारे विश्व के जो जीव हैं उनके कल्याण के बारे में सोचते हैं। तो ऐसा कोई नहीं है, केवल एक है। प्रभुपाद कहते हैं उस श्लोक के तात्पर्य में कि एक ही है, वो है केवल ऋषि है, साधु है, जो सारे जगत के हर जीव के कल्याण के बारे में सोचता है। इसलिए भागवतम के दूसरे स्कंध की शुरुआत में ही, पहले श्लोक में ही शुकदेव गोस्वामी बोलना शुरू करते हैं, तो परीक्षित महाराज का गुणगान करते हैं पहले श्लोक में। वो कहते हैं वरियानेश ते प्रश्न, कि कहते आपका प्रश्न बहुत श्रेष्ठ है। हाँ क्यों, वो कहते हैं इसलिए श्रेष्ठ है कृतो लोक हितम नृपा, क्योंकि इस प्रश्न के द्वारा सारे जगत के लोगों का हित हो सकता है। हाँ तो ऐसा चीज देखो, भागवत के पहले स्कंध के पहले श्लोक में यही बोला है ऋषि तत्व का वर्णन, और दूसरे स्कंध में जैसे ही सबसे पहले पहला वचन शुकदेव गोस्वामी के मुख से कुछ निकलता है तो ये ऋषि तत्व निकलता है। वो कहते हैं कि परीक्षित आप असली ऋषि हो, क्योंकि आपका प्रश्न केवल आपका हित नहीं करता बल्कि सारे जगत के लोगों का क्या करता है, हित करता है। तो इस प्रकार से जो वास्तव में ऋषि हैं, जो वास्तव में साधु हैं, वो सारे जगत के हित के बारे में सोचता है, क्योंकि वो अपने जीवन में अपने हृदय में इतना अधिक आनंद की अनुभूति करता है और वो देखता है कि सारा संसार दुखी है, इस दुख को देखकर उसको रोना आता है। श्रील प्रभुपाद मायापुर में प्रभुपाद जब अपने रूम की खिड़की में बैठे थे तो प्रभुपाद ने देखा उनके भक्त प्रसाद पा रहे हैं। प्रभुपाद को बहुत अच्छा लगता था जब भक्तों को आनंद से प्रसाद पाते हुए देखकर, तो सारे डिवोटीज प्रसाद पा रहे थे और प्रसाद पाकर जो पत्तल है वो एक जगह फेंक रहे थे दूर जाके, तो वहां कुत्ते भी आ रहे थे वो उचिष्ट खाने के लिए, और जो बंगाल के बहुत गरीब छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी उस पत्तलों को चावल ढूंढ रहे थे कुत्तों के साथ लड़ाई करके। तो प्रभुपाद ने जब ये देखा प्रभुपाद के आंखों से आंसू बहने लगे। प्रभुपाद ने अपने वरिष्ठ शिष्यों को बुलाया और उनको कहा कि आप प्रसाद वितरण की योजना शुरू करो, तो जो फूड फॉर लाइफ है वो शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार से देखा जाए कि जो भगवान के महान भक्त है, ऋषिगण है, साधु है, वो अपने जीवन में हृदय में अत्यधिक आनंदित है, लेकिन इस संसार के जीवों के दुख जब देखते हैं तो वो दुखी हो जाते हैं। इसी कारण से वैष्णवों को या भक्तों को कहा गया है पर दुखी दुखी, जो दूसरों के दुख को देखकर दुखी हो जाते हैं। इवन प्रहलाद महाराज कहते हैं प्रायेण देव मुनया स्वविमुक्ति कामा। कुछ ऐसे साधु भी हैं वो भी स्वार्थी वृत्ति के हैं, वो अपने स्वविमुक्ति कामा अपनी मुक्ति की प्राप्ति करने के लिए क्या करते हैं, मौनम चरन्ति विजने ट्रैवल करते हैं, चरन्ति जाते हैं, कहाँ जाते हैं, जंगलों में जाते हैं, हिमालयाज में जाते हैं, परार्थ निष्ठा, लेकिन दूसरों का हित करने में उनकी कोई निष्ठा नहीं है। तो ऐसे साधुओं को भी जो प्रहलाद महाराज है वो उनकी कड़ी निंदा करते हैं। प्रहलाद कहते कि मैं जानता हूं हे कृष्णा, यदि आपके चरणों की कोई शरण नहीं ग्रहण करेगा तो वो इस संसार में कदापि सुखी नहीं हो सकता। इसलिए परीक्षित कहते हैं कि मैं खुद सुखी हूं क्योंकि मैंने कला सीखी है। क्या है वो कला, माया। वो कहते हैं कि मैंने आपके गुणों का गान करना सीखा है जिसके कारण से इस संसार का मुझे थोड़ा भी भय नहीं है, लेकिन मुझे उन जीवों की चिंता है जो बहुत अधिक कृपण है और जिन्होंने इस संसार में इंद्रियों का भोग करना ही अपने जीवन का परम लक्ष्य बनाया है। शोचे तथा विमुखता विमुखा, कहते आपसे जो विमुख है ऐसे लोगों की मुझे चिंता है, मैं उनको आपके चरणों में लाकर रखूंगा। इस प्रकार से वास्तव में ऋषि का जो सबसे पहला गुण है कि वो सदैव उत्सुक होता है दूसरे जीवों के हित करने के लिए या दूसरे जीवों का हित साधने के लिए। जैसे प्रभुपाद है, प्रभुपाद भी वृंदावन में बैठ के कृष्ण भावना का आस्वादन कर रहे थे, लेकिन वो फिर भी क्या किए, उसको छोड़कर अमेरिका चले गए। व्यासदेव आराम से हिमालय में खुश थे, सरस्वती नदी के तट पर बेर वृक्ष के नीचे निवास करते हुए हैं, लेकिन फिर भी इस संसारिक जगत के जीवों की चिंता थी जिसके कारण में व्यासदेव ने कष्ट उठाया। क्या, श्रीमद् भागवतम की रचना की, ग्रंथों का संकलन किया, महाभारत आदि जैसे ग्रंथ शूद्र आदि के हित के लिए प्रदान किए, जिसमें भगवद गीता प्रदान की। इस प्रकार से सदैव जो साधुगण है ऋषिगण है वो दूसरों के हित की चिंता करते हैं। तो ये भाव कैसे आ सकता है, ये उसी व्यक्ति में आ सकता है जो व्यक्ति वास्तव में कृष्ण भावना का आस्वादन कर रहा है, भक्तिमय जीवन का, भक्ति को रिलिश कर रहा है आनंद के साथ। और जब यदि कोई व्यक्ति भगवत भक्ति को रिलिश करता है तो उसका हृदय अत्यधिक कोमल हो जाता है, और कोमल होने के कारण उसका हृदय दूसरे जीवों के दुखों को देखकर रोने लगता है हृदय, जिसके कारण वो उनके हित के लिए दौड़ पड़ता है। तो इस प्रकार से शास्त्र ये भी कहते हैं कि कैसे हम समझें कि कृष्ण के लिए हमारे हृदय प्रेम है या नहीं है उसका एक मापदंड है। जैसे बुखार को चेक करने के लिए थर्मामीटर होता है, थर्मामीटर है ना, तो उसी प्रकार से कृष्ण के प्रति अनुराग प्रेम है या नहीं है उसके लिए भी एक मापदंड है। मापदंड क्या है? सबसे पहले है कि भगवान की सेवा के लिए वो पागल रहता है, भगवान की सेवा के लिए पागल। और दूसरा है कि वो भगवान के जो भक्त हैं उनके साथ उनका बहुत गहरा मित्रता का संबंध होता है। और तीसरा है जो इस संसार के जीव हैं उनके प्रति दया की भावना होती है। उसी को गोस्वामियों ने कहा या चैतन्य महाप्रभु ने संक्षिप्त रूप से कहा है, नामे रुचि जीवे दया और वैष्णव सेवा। तो इस प्रकार से यहां आप देखेंगे कि इस संसार में सारे जीवों में स्वार्थ की भावना है, निस्वार्थ की भावना केवल केवल भगवान के जो भक्त हैं, ऋषिगण हैं, उनके हृदय में है। इसलिए शौनक आदि ऋषि हजारों सहस्र सालों के लिए यज्ञ कर रहे हैं। यज्ञ का मतलब है सैक्रिफाइस, अपना जीवन जलाना। किसके लिए? दूसरों के हित के लिए। दिया को हम देखते हैं ना, वो दिया जलता रहता है किसको प्रकाश देने के लिए? दूसरों के लिए। तो ये वास्तव में एक ऋषि का जीवन है जो दूसरों के लिए अपना जीवन स्वाहा कर देता है। भगवान की सेवा में लगना दूसरों के हित के लिए है, मतलब अपना जीवन क्या करना, स्वाहा कर देना, उसी को संन्यास आश्रम कहते हैं। संन्यास आश्रम का मतलब है वो व्यक्ति मर गया है सामाजिक रूप से, इसलिए संन्यास आश्रम में या संन्यास देते समय कुछ मृत के मंत्रों का उच्चारण किया जाता है कि ये सामाजिक रूप से अभी सबके लिए मर गया है, अभी इसकी कोई और भौतिक जिम्मेदारी नहीं है, इसका जीवन केवल केवल दूसरों के हित के लिए है। हाँ, लेकिन हम देखते हैं श्रीमद् भागवतम हमें यही सिखाता है कि हमें क्या करना है, इस वृत्ति को बढ़ाना है, दूसरों को देने की वृत्ति, हाँ देने की वृत्ति बढ़ानी चाहिए। एक बार 1000 के नोट और 1 रुपए की नोट, उनमें लड़ाई शुरू हो गई। वो 1000 की नोट कहते, देखो अरे तू नीच, 1 रुपए की नोट, मैं देखो कहाँ कहाँ घूम के आती हूँ, अमेरिका से लेकर बांग्लादेश तक सब जगह घूमती हूँ, तू नीच कहाँ पड़ी रहती हो। तो ये 1 रुपए की नोट बड़ी विनम्र थी, बुद्धिमान थी, उसने कहा अरे तुम्हें इतना घमंड, इतना अहंकार, तुम जहां नहीं जाती हो ना वहां मैं चली जाती हूँ। 1000 वाले ने पूछा कहाँ जाती हो, कहते भगवान के डोनेशन बॉक्स में, जहां तुम्हें प्रवेश नहीं है वहां में पहुंचती हो। तो अधिकतर कौन सी नोटें होती है डोनेशन बॉक्स में? 1 रुपीज, आजकल तो 10 की ज्यादा नोट होती है। हम जब दिल्ली में डोनेशन बॉक्स काम करते थे हर वीक, तो सबसे अधिक नोट्स कुछ मिलती थी तो केवल 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 10 रुपए के नोट्स होते थे। तो इस प्रकार से हमें केवल लेना पता है, देना नहीं पता, मतलब दूसरों के लिए जीवित रहना, आपने आपको दूसरों के हित के लिए जलाना, दूसरों के हित के लिए तपस्या अपने जीवन में स्वीकार करना, यह हमें पता नहीं है। हाँ, जैसे प्रभुपाद एक उदाहरण बताते थे, कुछ मित्र नाव में जा रहे थे, उनमें से एक गिर गया। जैसे ये गिर गया तो दूसरा कहता है अरे आपका हाथ दे दो मुझे, मैं आपको ऊपर उठा लेता हूं। वो हाथ देने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि उसको देने की भाषा, दूसरा कहते है इसको देने की भाषा समझ में नहीं आती, आप ये बोलो कि मेरा हाथ ले लो, तब वो अपना हाथ देगा, हाथ में फिर उसको ऊपर उठा। तो मतलब इस संसार में हम सारे जीव केवल लेना जाते हैं, जानते हैं, देना नहीं जानते। भगवान से भी कभी आकर कहते भगवान आपके लिए मैं कुछ करता हूं, भगवान ये दे दो मुझे शक्ति दो भक्ति के लिए भी, हाँ, या फिर बाकी सारे सुविधाओं के लिए उनसे मांगते हैं, लेते रहते लेते रहते लेते रहते हैं, लेकिन देने की भावना नहीं है। ब्रजवासियों का गुण है, ब्रजवासी मीन्स जो सब कुछ कृष्ण को देने के लिए तैयार है, कृष्ण से कुछ भी लेना नहीं चाहते अपने लिए। हाँ, तो इस प्रकार से इस संसार में हाँ ये जो ऋषिगण है जो सदैव पहला लक्षण है ऋषि का, ऋषि तत्व का, कि पहला लक्षण है कि दूसरों का हित करने के लिए सदैव उत्सुक है या चिंतित है। इसलिए कृष्ण जानबूझ के दशम स्कंद में बलराम जब वो जा रहे थे दोनों गोवे चराने तो उनको वृक्ष का उदाहरण दिया। बलराम को कहा देखो देखो कृष्ण के लिए वृक्ष देखो आपको प्रणाम कर रहे हैं। फिर वृक्षों का वर्णन करते हुए कृष्ण उनका गुणगान करते कि देखो दूसरों के हित के लिए वृक्ष का जीवन है। कोई एक व्यक्ति बड़ा अच्छे से समझा रहा था कि वो कह रहे थे मुझे कि देखो जो बीज है, हाँ जो बीज होता है वो अपने आप को नष्ट कर देता है। किसलिए नष्ट करता है? हजारों वृक्ष आ जाए हाँ जिनके हित हो। तो एक साधु का जीवन या सन्यासी या ऋषि का जीवन क्या है? उस बीज के समान है जो अपना जीवन जला रहा है, नष्ट कर रहा है, स्वा कर रहा है दूसरों के हित के लिए। उसी प्रकार से गुरु का जीवन होता है। गुरु अपनी सारी शक्ति डालता है, किसमें डालता है? शिष्यों में, जिसके द्वारा आगे चलकर असीम जो जीव है कृष्ण भावना के पास आ जाए। तो केवल यही काफी नहीं है कि केवल दूसरों के हित की हित के लिए उत्सुक रहना या चिंता करना। हाँ, सेकंड चीज आपके पास होनी चाहिए, वो क्या है? वो हित किस चीज से हो सकता है उसका पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। इसलिए जो साधु है, ऋषि है, वो उत्सुक है, चिंतित है, लेकिन उनके पास सॉल्यूशन पता है, उनके पास जीवों का हित करने के लिए पूर्ण ज्ञान है, ये है कंप्लीट नॉलेज उनके पास है। हाँ, तो इस संसार में आप देखते हैं समाज का कल्याण करने वाली बहुत संस्थाएं हैं, बहुत सारे लोग हैं, लायंस क्लब, रोटरी क्लब, बहुत सारे क्लब हैं। शुरुआत में वो सब चीजें अच्छी थी कि धनवान लोग एकत्रित आकर कुछ धन का इस्तेमाल गरीब लोगों के लिए करते थे, लेकिन आजकल वो सब चीजें खत्म हो गई। केवल भौतिक रूप से एक साथ मिलने का एक साधन बन गए हैं सारे क्लब, और अपनी सुविधा अर्जन करने का एक उपाय माध्यम बनी है ये सारी चीजें। लेकिन केवल ये नहीं है कि आप चिंतित हो, उत्सुक हो, लेकिन आपके पास क्या भला हो सकता है, कैसे भला हो सकता है वो पता होना चाहिए। एक व्यक्ति हॉस्पिटल में जाकर स्वीट्स काटने लगा, उसका बर्थडे था, उसका उद्देश्य तो अच्छा था कि मेरा जन्मदिन है, मैं अकेला एंजॉय कैसे करूं स्वीट्स, मैं दूसरों को भी खिला के आनंद मनाऊंगा। उसने खिला दिए बहुत सारे रोगियों को स्वीट्स, और वो रोगियों को पता नहीं था कि उनका शुगर हाई हो गया है। तीन चार रोगी मरते मरते बच गए। हाँ, तो इतना काफी नहीं है कि आप बड़े उत्सुक हो, चिंतित हो, लेकिन एक उद्देश्य अच्छा था, हाँ भावना भी अच्छी थी, लेकिन सही नॉलेज नहीं था, हाँ उचित ज्ञान नहीं था कि किसमें उनकी भलाई हो सकती है, इसके बारे में पता नहीं था। देखो राजनेता भी आपको पता है जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो सन्यासियों से भी अधिक कार्य करते हैं, सन्यासियों से भी अधिक तपस्या करते हैं। उनके पास एक एक मिनट नहीं होता, बहुत कम अपने लिए जीते हैं जो पॉलिटिशियंस होते हैं बड़े बड़े। हाँ, लेकिन इतना सब करने के बाद भी वो भी किसी का भला नहीं कर पाते। फेमस पॉलिटिशियन लीजिए महात्मा गांधी। हाँ, महात्मा गांधी के हृदय में कितना इच्छा था कि मेरे भारत के दो टुकड़े नहीं होने चाहिए, मेरे शरीर के दो टुकड़े हो जाएंगे यदि मेरे भारत के दो टुकड़े हो गए। सोचो कितना बड़ा वो था, भावना था, हित का भाव था। हाँ, इसलिए कोई कहता है कि महात्मा गांधी संतों में राजनीतिज्ञ थे, और राजनीतिज्ञों में कौन थे? संत थे। लेकिन इतना सब उन्होंने समाज के लिए किया, और वो चाहते थे कि सब में समानता आ जाए, इसलिए हरिजन शब्द निकाला, सबको हरिजन, परिजन, ऐसे कई प्रकार के जन, ऐसा सब कुछ उन्होंने प्रयास किया, लेकिन सब अंततः क्या हो गया? फेल हो गया। प्रभुपाद ने लिखा तुम्हारी एक आवाज से लोग तैयार हो जाते हैं सब कुछ करने के लिए। तुम गीता आके सीखो, और उसका प्रचार करो, बस ये सब छोड़ दो अभी राजनीति, सुना नहीं। हाँ, तो ऐसा सब होकर भी उनका उद्देश्य अच्छा थी, भावना अच्छा थी, लेकिन तरीका गलत था जगत का भलाई करने का। तो सही तरीका क्या है? शास्त्र कहते हैं यज्ञ वै विष्णु, यज्ञ करो किसके लिए? विष्णु के लिए, यज्ञ वै विष्णु, और यही शाश्वत उपाय है। इसलिए श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि पूर्ण ज्ञान क्या है? सवे पुंसा परो धर्म यतो भक्ति अदोक्षजे अहेतु की अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति। ये पूर्ण ज्ञान है कि सारे जीवों का परम श्रेय, परम धर्म, परम भलाई किसी चीज से हो सकती है तो वो केवल भगवान के अहेतु की निरंतर भक्ति में लगकर ही हो सकती है। प्रभुपाद उसको कहते हैं जड़ में पानी देना या पेट को भोजन खिलाना। उसी को प्रभुपाद और एक शब्द में कहते हैं यस्मिन तुष्ट है जगत तुष्ट। द्रौपदी ने भगवान कृष्ण को शाप खिलाया अपने अक्षय पात्र से, वह दुर्वासा मुनि और उनके 60,000 शिष्य नदी में स्नान करते हुए पेट पर हाथ घुमाकर डकार दे रहे थे, तुष्ट हो गए। तो यही है असली तरीका, यही है पूर्ण ज्ञान। तो ऐसे महापुरुषगण साधु वे दूसरा लक्षण है कि वो सॉल्यूशन को जानते हैं, पूर्ण ज्ञान को जानते हैं। सॉल्यूशन क्या है? हरेर नाम, हरेर नाम, हरेर नाम एव केवलम्, कलो नास्तेव नास्तेव गतिरन्यतः। और तीसरी चीज है कि ठीक है, कोई व्यक्ति बहुत चिंतित है, उत्सुक है जगत का हित करने के लिए, उसके पास बहुत ज्ञान भी है, पूर्ण ज्ञान है, परफेक्ट नॉलेज है, लेकिन तीसरी चीज भी आवश्यक है। वो क्या है? इस ऋषियों में प्रभुपाद उस तात्पर्य में लिखते हैं कि इन ऋषियों में वो तीसरा लक्षण है जिसके कारण ये ऋषि तत्व पूर्ण होता है, वो है कि उस नॉलेज को या उस ज्ञान को अप्लाई करने के लिए या जगत का भला करने के लिए सब प्रकार का रिस्क अपने जीवन में लेने के लिए तत्पर है। श्रील प्रभुपाद देखो 70 साल की आयु में इतना बड़ा रिस्क ले लिया। सबसे बड़ा डिवोटी पहचानना है जो जितना बड़ा कृष्ण की सेवा के लिए रिस्क लेता है अपने लाइफ में, वो ग्रेटेस्ट डिवोटी है। और ये स्वभाव है, क्योंकि जो ऋषि है अपने इस मूल स्वभाव को नहीं त्यागता। जिस प्रकार से एक कोई साधु जल में गया था नहाने, तो वहां बिच्छू को देखा पानी में गिरा हुआ है, उसको ऐसे उठा रहा था, बिच्छू डंक मार रहा था, गिर रहा था हाथ से, फिर साधु बारंबार ले रहा था, फिर गिर रहा था डंक मार के। तो किसी ने कई बार हो गया, कोई तट पर कहते अरे आप मूर्ख तो नहीं हो गए साधु महाशय, ये आपको बारंबार काट रहा है और आप इसकी भलाई करने में लगे हो। कहते उसका स्वभाव है डंक मारना, वो अपने स्वभाव को नहीं त्याग रहा है, तो मैं अपने स्वभाव को क्यों त्यागूं? तो यह है कि हर प्रकार का रिस्क लेता है, बड़े से बड़ा कष्ट सहन करने के लिए तत्पर होता है जो ऋषि है, दूसरों के हित के लिए। हाँ, ये उनका परम स्वभाव है। तो कभी भी भगवत भक्ति को यह नहीं समझना चाहिए हमें कि ये रोज का बेड है, बहुत अच्छा है। बेड मुलायम बेड होता है ना, भक्ति में आने के बाद लगता है कि सब कुछ सॉफ्ट है, मुलायम है, अच्छा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, अच्छा होगा। नहीं, भगवान ने यही तो दिखाया, जितने भी भक्त है भगवान के, उनके जीवन में कष्ट कूट कूट के भरा हुआ है। भगवान ने दिखाया बेटा कृष्ण भक्त बनना है पांडवों को देखो, कृष्ण का डिवोटी बनना है कुंती को देखो, द्रौपदी को देखो, उत्तरा को देखो, कितने अग्नि परीक्षाओं से गुजरे हैं। बनना है कृष्ण भक्त? कुछ लोग हाथ ऊपर करते नहीं, हमें भाग जाते, इतना सब नहीं चाहिए हमें, ऐसा भक्त नहीं बनना है। तो यदि भक्त बनना है तो इन भक्तों को देखना पड़ेगा, इनको अपने आंखों के सामने रखना होगा, तब हम जीवन में जो मर्जी विपदा आए, जो मर्जी ऊपर नीचे कष्ट आए, हम विचलित नहीं होंगे। हमारा जो मार्च है आगे बढ़ने का, वो बना रहेगा, हम आगे चलते जाएंगे। कुंती है, पांडवाज है, द्रौपदी है, उत्तरा है, हरिदास ठाकुर है, ये सब कभी रुके नहीं। तो इस प्रकार से ये जो भक्त है प्रभुपाद देखो, प्रभुपाद के पास धोती खरीदने के लिए पैसे नहीं थे जब दिल्ली में रह रहे थे। अपने गुरु भाई को लिखा कि मेरे लिए धोती खरीद के दे दो, पहाड़गंज के गौड़ियागंज में जब रह रहे थे। इतने गरीब, पैसे नहीं है, दूसरों से भिक्षा मांगनी पड़ रही है, अब वो व्यक्ति तैयार है कहाँ जाने के लिए, अमेरिका का सपना देख रहा है, अमेरिका जाऊंगा, इतना बड़ा रिस्क 40 रुपए लेकर पहुंच गया, हाँ हार्ट अटैक आ गया। तो मतलब ये वास्तव में ऋषि का परम लक्षण है कि जो सदैव दूसरों के हित के लिए सब प्रकार के कष्ट सहन करने के लिए तत्पर है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने जानबूझ के वृक्ष का उदाहरण दिया। चैतन्य चरितामृत में एक स्थान में महाप्रभु कहते हैं, काटी लेना वृक्ष किछु ना बोला है, वृक्ष को काट दोगे तभी कुछ भी नहीं बोलता। हाँ, या हम किसी भक्त की चप्पल पहन के जाए, गलती से वहां बाथरूम के लेते वक्त पहन के जाते हैं दूसरे की, तो आग बबूला हो जाते हैं, या फिर कुछ धक्का लग जाए नाचते नाचते, या प्रसाद सर करते करते एक बूंद गिर जाए दाल की यहाँ से वहां कपड़ों पर, वो भी सफेद धोती कुर्ता आज ही नया पहन के आया हूँ मंदिर, तो अंदर से ऐसा गुस्सा उमड़ पड़ता है। हाँ, तो कहाँ हम हित कर पाएंगे किसी का या अपना। तो इस प्रकार से ये ऋषि तत्व है। हाँ, तो ऐसे एक एक महान ऋषि का मुझे बड़ा याद आ रही थी, और उनका नाम है अगस्त्य मुनि। मैं सोच रहा था अगस्त्य मुनियों की बहुत अमेजिंग अमेजिंग पास्ट टाइम्स हैं, तो उनके बारे में सुना, लेकिन समय तो हो गया। तो ऐसे ऋषि हैं जो सदैव दूसरों के हित की चिंता में लगे रहते हैं। तो ब्रह्मा इतने सारे चीजों का सृष्टि कर रहे हैं, उसका एक ही उपाय, एक ही उद्देश्य है, हाँ, इस जगत के जीवों का कल्याण करना। तो ये ऋषि तत्व क्या है, उसका पहला लक्षण है कि ऋषि सदैव उत्सुक रहता है जगत का, जगत के लोगों का हित या कल्याण करने के लिए। और दूसरा है, केवल उतना ही नहीं बल्कि किस चीज से कल्याण हो सकता है परम कल्याण, उससे वो पूर्ण रूपेण अवगत है, उसको पूर्ण ज्ञान है। और तीसरी चीज है कि उस कल्याण करने के लिए या उस ज्ञान का पूर्ण एप्लीकेशन करने के लिए वो अपने जीवन को दांव में लगा देता है, रिस्क लेता है पूर्ण रूप में दूसरों के हित के लिए। तो ऐसे एक ऋषि थे, थोड़ा सा 5-10 मिनट आपके लेता हूँ, अगस्त्य मुनि। अगस्त्य मुनि दक्षिण भारत में एक स्थान है, मेल्लकोटे। श्री संप्रदाय के 4 प्रमुख प्लेसेस हैं, गौड़ियों के वृंदावन, मायापुर, जगन्नाथपुर। वैसे ही रामानुजा के फॉलोवर्स का 4 स्थल है, एक है श्रीरंगा, तिरुपति, कांचीपुरम, और चौथा है मेल्लकोटे। तो जो मेल्लकोटे है वहां से कुछ किलोमीटर, 100 किलोमीटर दूर पर अगस्त्य मुनि का निवास स्थान है। हाँ, उसको कहते हैं, वहां एक विशाल सुंदर मंदिर है, और उस मंदिर का नाम है हिमवत गोपाल स्वामी। वो स्थान भंडीपुर कहलाता है, जिसमें बहुत बड़ा जंगल है घेरा, और जंगल में बड़ा सा पहाड़ है, और पहाड़ के ऊपर गोपाल का मंदिर है, जैसे साक्षी गोपाल है ना जगन्नाथपुरी में खड़े हैं, ऐसे वैसे मंदिर है उनका गोपाल का। तो उनका नाम है हिमवत गोपाल स्वामी। हिमवत, हिम मतलब बर्फ, और वत मतलब जैसा। हाँ, बर्फ जैसे क्या है, गोपाल स्वामी है, वो जैसा स्थान है। तो ऐसे स्थान में भगवान रहते हैं, बहुत ऊंचाई पर है, और इसलिए उसको बर्फ का नाम क्यों दिया है कि इतना ऊंचाई पर है कि बादल हमेशा रहते वहां, और रोज हमेशा मंदिर के द्वार पर बूंद गिरती रहती है। हाँ, 365 दिन जल की आपस से बूंद गिरती रहती मंदिर के द्वार पर। तो ऐसा ही विशेष स्थल है, वहां यह अगस्त्य मुनि का निवास स्थान है। तो अगस्त्य मुनि ने वहां ये बना दिया है, क्या बनाया है, एक कुंड बनाया है। एक कुंड बनाया था अगस्त्य मुनि ने, जिस कुंड में एक बार एक कौवा चला गया, गलती से कौवा चला गया, और मतलब वहां उस स्थान में कोई कौवा नजर नहीं आता है, आज भी जाओगे तो कौवा चला गया, तो कौवा जब बाहर निकला तो हंस बन के बाहर निकला, इसी कारण से वहां कोई कौवे है नहीं, सारे कौवे क्या बन गए, हंस बन गए। तो इस प्रकार से अगस्त मुनि, जिनका नाम अगस्त्य इसलिए है, अग का मतलब है पर्वत, और अस्ते में जिन्होंने दबा दिया पर्वत को, जिन्होंने दबा दिया उनका नाम क्या पड़ा? अगस्त्य मुनि। तो अगस्त्य मुनि भी हमेशा दूसरों के हित के लिए सदैव लगे रहते हैं। हाँ, दूसरों के हित के लिए उनकी कई सारी लीलाएं हैं। मैं तो एक ही छोटा सा पास टाइम बताता हूँ, बाद में कभी चर्चा करूंगा अगस्त्य मुनि की। उनका वो फेमस पास टाइम आता है, एक दो भाई थे अगस्त्य मुनि, एक बार जा रहे थे जंगल से। तो जंगल से जाते जाते उन्होंने देखा, एक वृक्ष को देखा, और वृक्ष को देखते उन्होंने देखा कि वहां कुछ लोग उल्टे लटके हुए हैं। तो अगस्त्य मुनि ने जैसे उनको देखा, अरे कहा, आपकी ये स्थिति क्या है, आप उल्टे लटके हुए हो यहाँ पेड़ में। एक पक्षी होता है ना उल्टा लटकता है रात को, क्या कहते हैं, चिमगादड़ की तरह उल्टे लटके हुए थे। अगस्त्य मुनि कहते, अरे आप उल्टे लटके हुए हो। कहते हम तो, इन्होंने पूछा आप कौन हो, अगस्त्य मुनि उनको कहते, वो कहते हम तो आपके पितरगण है, हम फोर फादर्स, पूर्वज है, हमारे पाप आदि के कारण ऐसी हमारी दयनीय स्थिति हो गई है, और आप कुछ पिंडदान करोगे तभी हमारा उद्धार हो सकता है। हाँ, पिंडदान कैसे, आपको पुत्र है नहीं, विवाह नहीं किया, तो पिंडदान भी नहीं कर सकते, अभी हमारा उद्धार ही नहीं होगा। और दूसरा उपाय कि पूर्ण साक्षात्कार भी आपने अभी तक प्राप्त नहीं किया, तो हमारा उद्धार होना असंभव है, इसलिए अभी बस हम इंतजार करेंगे कब हमारा उद्धार होगा। तो ये देखकर अगस्त्य मुनि को दया आ गई अपने पूर्वजों की। तो अगस्त्य मुनि कहते अभी जाता हूँ, शादी कर लेता हूँ। वो गए नजदीक एक राजा थे, राजा के महल गए कि राजा आपकी पुत्री मुझे पत्नी के रूप में चाहिए, मुझे विवाह करना है। राजा कहता है मुनि जी, मेरे पास अब मुझे कोई कन्या ही नहीं है, खाली है मेरा घर, कोई पुत्र पुत्री ने जन्म ही नहीं लिया। तो अगस्त्य मुनि कहता है कैसे कल्याण होगा। अगस्त्य मुनि ने विधाता जी को बुलाया, जो सबकी सृष्टि करते हैं, और उनको बुला के उनके समक्ष जितना भी संसार में सौंदर्य था उसको इकट्ठा करके बुला लिया, और उससे उन सब चीजों ने क्या कर दिया, एक पुत्री का रूप धारण कर लिया, छोटी सी बच्ची। राजा को मुनि ने बच्ची दे दी, कहा 7 दिन के बाद ये शादी के लिए तैयार हो जाएगी, युवा हो जाएगी, मैं 7 दिन के बाद आऊंगा, इसका विवाह किससे, किसके साथ होना चाहिए, मेरे साथ होना चाहिए। तो अभी 7 दिन में बिल्कुल बड़ी हो गई, कितना अच्छा होता आजकल के माता पिता को अभी स्कूल में भेजो, उनका खर्चा कितना खर्चा करते हैं। मुझे कोई भक्त कह रहा था आजकल इतने स्कूलों में अपने बच्चों पर खर्चा कर रहे, भेज रहे, कि जब तक उनका शादी होने तक जितना पैसा वो लगा रहे बच्चे पर, उतना यदि बैंक में रखे तो आजीवन बच्चा खा सकता है आराम से, कोई काम नहीं करना पड़ेगा, केवल जब कर सकता है, इतना धन लगा रहे बचपन से लेके शादी तक, कितना पैसा लगाते हैं व्यक्ति, स्कूलों की इतनी महंगी फीस, हाँ ये सारी चीजें। तो जब इनका आ गए, शादी हो गया, तो पत्नी को लेके अपने आश्रम में चले गए, और पत्नी को कहा कि अभी हमें संतान उत्पन्न करनी है। तो वो पत्नी कहती है कि देखिए, हाँ मैं तो राजकुमारी हूँ, बड़ी हो गई हूँ राजकुमारी की तरह, इतना ऐश्वर्य में रहकर ये आश्रम का जीवन मुझसे नहीं चलता, कुछ ऐश्वर्य धन संपदा सुविधा दे दो तभी मैं बच्चों को जन्म देने के लिए तैयार हो जाऊंगी, अन्यथा आप मेरे पति हो, मैं पत्नी के रूप में आपकी सेवा करूंगी ब्रह्मचारिणी के रूप में। तो अभी अगस्त्य मुनि ने सोचा इसको तो बड़ा ऐश्वर्य चाहिए, धन संपदा सब कुछ। अगस्त्य मुनि फिर से राजा के पास गए, और राजा के पास जाकर उन्होंने देखा कि राजा के पास जाकर कहा कि राजा मुझे कुछ दान दे दो। तो राजा ने कहा जाओ मेरा भंडार देखो, तिजोरी सारा खाली है। अरे राजा के पास धन ही नहीं है, भिखारी राजा। राजा को पकड़ा, कहते चलो दूसरे राजा के पास चलते, वो राजा के ले गए दूसरे के पास। दूसरे ने कहा मेरे उनसे बुरी हालत चल रही है आजकल। फिर वो उसके पास नहीं, तीसरे के पास गए, तीसरे की वही स्थिति। फिर चौथे के पास गए, उसकी भी वही स्थिति। तो अगस्त्य मुनि ने कहा ये क्या हो गया, पहली बार मैं दान मांगने निकला हूं, किसी के पास दान नहीं है मुझे देने के लिए, तो चौथे को पूछा सारा धन किसके पास है, वो कहते दो भाई हैं। कौन है? जगाई मदाई। हाँ जगाई मदाई के जैसे थे, एक का नाम था इलवल और दूसरा का था वातापी। इलवल और वातापी दो पावरफुल जगाई मदाई के जैसे भाई। हाँ तो ऐसे खाकी ये दोनों बड़े शरारती हैं, बहुत आसुरी हैं। इन दोनों ने महा अत्याचार किया है, सारा धन। कोई राजा गुजरता है जंगल से, उसको बुलाते हैं, बड़ा आदर पूर्वक घर में बुला लेते हैं, भोजन खिलाते हैं, और ऋषियों को और ब्राह्मणों को, विशेष रूप से ब्राह्मणों को बहुत बुलाते थे, और धनवान लोगों को जो भी गुजरता, आइए आइए हमारे घर में प्रसाद भोजन करिए फिर जाइए। और भोजन कैसा, वो उनका जो भाई था इलवल, इलवल के पास बड़ी सिद्धियां थी, जो वातापी हैं, वो वातापी को ये बकरी बना देता था, हर बकरी को काट के उसका मांस पका देता था, और जो भी आए उसको अच्छा सा मांस खिलाता था। और जब वो खा लेते थे, डकार देते थे, तो इलवल जोर से पुकारता था, हे मेरे भाई वातापी अभी बाहर आ जा। तो जिसने जिसने खाया है मांस उस बकरे का, क्योंकि वातापी क्या बना हुआ था, बकरा, अभी वो बकरा बना हुआ था, जिसने जिसने खाया उसका पेट फाड़ के बाहर आ जाता था। ऐसे हजारों लाखों लोगों को मारते जा रहा था, ब्राह्मणों को भी, और ब्राह्मणों को विशेष रूप से बुलाता था श्राद्ध के लिए, कि मेरे पिता का श्राद्ध है। हजारों ब्राह्मणों को बुलाते थे, फिर यही मांस पकाते थे, उस समय अलाउ था। हाँ इसलिए कलयुग में 5 चीजें मना है, क्या है, अश्वमेधम गवालंभम संन्यासम पैल पैतृकम देवरेण सुतोत्पत्ति कलो पंच विवर्जय। कि अश्वमेध यज्ञ, घोड़े को मार के जो यज्ञ देते हैं, क्योंकि इनको जो मारा जाता था, चाहे गाय हो, घोड़ा हो, बकरा हो, उनको जीवित कर देते, ऐसा गुण था उस समय। तो अश्वमेध यज्ञ अलाउ नहीं है, गवाल अश्वमेधम गवालंभम गाय का वध करके जो यज्ञ करते हैं वो अलाउ नहीं है कलयुग में। संन्यास, संन्यास लेना कलयुग में अलाउड नहीं है, इसलिए प्रभुपाद कहते हैं ये संन्यास, हमारा संन्यास प्रचार के लिए है, इसलिए ये संन्यास प्रभुपाद देते हैं। अश्वमेधम गवालंभम संन्यासम पैल पैतृकम, ये जो पैल का मतलब होता है मांस, पैतृकम मतलब श्राद्ध। हाँ जो पिता या पूर्वजों को श्राद्ध देने के लिए उस समय क्या करते थे, ब्राह्मणों को मांस देते थे, और ब्राह्मण पचा डालते थे, बकरा भी जीवित हो जाता था। हाँ और फिर है देवरेण सुतोत्पत्ति, यदि अपने भाई से देवर होता है ना, उनके द्वारा क्या कहते हैं पुत्र उत्पत्ति करना, हाँ तो वो कलयुग में अलाउड नहीं है। उस समय जैसे द्वापर में व्यास देव ने विचित्र वीर्य के पत्नी के गर्भ से क्या किया था, बच्चों को जन्म दिया था। तो इस प्रकार से चीजें हैं जहां ये बुला लेते थे, ब्राह्मणों को खिलाते थे, और फिर पेट फाड़कर बाहर आ जाता था जो वातापी हैं। तो इनको पता चला कि सारा धन इनके पास है, तो अगस्त्य मुनि गए कि इन्होंने पूरा नरसंहार शुरू किया है, ब्राह्मण संस्कृति को डुबा रहे हैं, तो उनके सब जीवों के हित के लिए क्या किया, ये 4 राजाओं को लेके पहुंच गए अगस्त्य मुनि उनके वहां। और वो इलवल ने बड़ा आमंत्रण स्वागत किया, आइए आइए मुनि जी, आइए हमारे घर, और उनको बिठा दिया, कहते हमारा आतिथ्य स्वीकार कीजिए। तो इन्होंने बकरे का मांस पका कर खिलाना शुरू किया अगस्त्य मुनि के सामने, और फिर राजाओं के सामने भी रखा, कहा मैं थोड़ा सा आता हूं बाहर जाकर। इलवल जैसे बाहर गया तो अगस्त्य मुनि ने राजाओं को कहा कुछ भी नहीं खाना है आपने। अगस्त्य मुनि को पता था पावरफुल है, उनको कहा कुछ भी मत खाइए। तो ये जो असुर इलवल आता है वापस, इलवल जैसे आता है और ये कहता है कि आपने अभी तो खाया नहीं, राजाओं को कहते, राजा कहते आजकल आज हमारा उपवास है, केवल गुरु जी खाएंगे। तो इलवल ने राजाओं के सामने का सब भोजन उठा के किसके सामने रखा, अगस्त्य मुनि के सामने। अगस्त्य मुनि ने सारा ऐसे टक कर दे, पावरफुल है अगस्त्य मुनि, एक बार तो पूरा समंदर पिए थे, पता है ना, देवताओं के और जगत के हित के लिए। तो ये ऐसे ऋषि है। तो जैसे ही ये सारा रखा उनके सामने, अगस्त्य मुनि खा लिए, खाकर कहा तुम्हारे पिता का भला हो, तुम्हारा भला हो, और आपने पेट पर ऐसे हाथ ऐसे घुमाया और कहा वातापी जीर्ण भव, क्योंकि वातापी अभी तुम डाइजेस्ट हो जाओ, जो खा लिया था ना, अभी आए। इलवल कहता है अपने भाई को पुकारता है, उनका सेम स्टाइल था। इलवल ने पुकारा, मेरे भाई वातापी बाहर आ जाओ। तो अगस्त्य मुनि कहते हैं वातापी अभी हमेशा के लिए क्या हो गया, डाइजेस्ट हो गया है, अभी वो कभी भी बाहर नहीं आ सकता। फिर इलवल को भी मार दिया अगस्त्य मुनि ने। तो ऐसे अगस्त्य मुनि है जो जगत के हित के लिए, लोगों के हित के लिए क्या करते हैं, सबको विनाश करते हैं। देवता का बेचारे परेशान थे। ये आसुर क्या करते थे, कैलकेय प्रकार के जो आसुर है, जो रात को बड़े पावरफुल थे, देवता रात को बड़े वीक हो जाते हैं, वो लड़ाई नहीं कर पाते। ये आसुर रात को निकल देते हैं, आसुर शक्ति रात को बड़ी पावरफुल हो जाते हैं ना। तो आसुर जब बाहर निकलते थे परेशान हो जाते, देवता परेशान, साधु ऋषि मुनि जंगल में सब परेशान, और दिन में सारे आसुर समंदर में जाके छुप जाते थे। अभी देवता करे तो क्या करे, रात को परेशान, दिन में युद्ध करे तो समंदर के अंदर सारे। तो गए विष्णु के पास, उनको प्रार्थना कर दे, विष्णु देव कुछ करो। विष्णु ने कहा एक ही पावरफुल डिवोटी है, वो अगस्त्य मुनि के पास जाओ, वो सारा उपाय ढूंढेंगे। अगस्त के पास गए, अगस्त्य मुनि ने कहा कि मेरे पास उपाय है, आप सब लोग कल बिल्कुल तैयार होके आना दिन में युद्ध करने के लिए, मैं सुबह सुबह उठ के पूरा समंदर पी लेता हूं, जैसे पी लूंगा पूरा सुखा लूंगा, सारे आसुर वहां खड़े हो जाएंगे, दिखाई देंगे, उस समय उनका विनाश करो। अगस्त्य मुनि पहुंच गए और पूरी सेना देवताओं की एक तरफ खड़ी और पी लिए पूरा समंदर, पी लिए तो पूरे आसुर ऐसे देखने लगे ये क्या हो गया है, पानी खत्म हो रहा है, कौन है जो समंदर को पी रहा है। अगस्त्य मुनि ने पी लिया और देखा कि खाली हो गया पूरा। तो फिर देवतागण सारे आसुरों को मार डालते, अभी तो बहुत बड़ा गड्ढा हो जाएगा ना। तो अगस्त्य मुनि ने फिर से सारा पानी बाहर निकाला, इसलिए वो कैसे बना, खारा नमकीन। तो इस प्रकार से अगस्त्य मुनि हैं जिनकी बहुत सारी ऐसी ऐसी छोटी छोटी घटनाएं हैं, जिन्होंने सारे जगत के ऋषि मुनि देवता सबके हित के लिए क्या किया, बहुत कष्ट उठाया परम कल्याण के लिए। इस प्रकार से ब्रह्मा आदि का यही लक्षण है, वो वास्तव में असली ऋषि हैं, साधु हैं। और श्रील प्रभुपाद और अगस्त्य मुनि में कोई भेद नहीं है, इन्होंने तो वातापी इलवल दो का उद्धार किया है, लेकिन प्रभुपाद ने कितने आसुरों को मारा है। इन्होंने एक कुंड बनाया, कौवे उसमें से हंस बनते थे, प्रभुपाद ने एक कुंड बनाया, इतना बड़ा कुंड, कितना बड़ा, सारे जगत में फैला हुआ है, वो तो कौन सा है, श्रीमद् भागवतम। इसलिए भागवतम के पहले स्तर में प्रभुपाद और उसके इंट्रोडक्शन में प्रभुपाद ने लिखा है कि ये जो कृष्ण कथा जो भागवतम में वर्णित है, वो यदि कोई पढ़ता है तो वो निश्चित रूप से हंस के समान हो जाता है, और जो कौवे के समान व्यक्ति हैं वो कचरे में आनंद लेते हैं। तो इस प्रकार से प्रभुपाद और इन ऋषि मुनियों में कोई अंतर नहीं है। तो ऐसा परम लक्षण है ऋषि तत्व का, तीन लक्षण, कौन से, रिपीट करके मैं खत्म करता हूं। एक है कि ऋषि सदैव जगत के हित के लिए उत्सुक या चिंतित रहते हैं। दूसरा है केवल उत्सुक या चिंतित नहीं, बल्कि किस चीज से उनका परम कल्याण हो सकता है ऐसे पूर्ण ज्ञान से वो अवगत है। और तीसरी चीज, केवल नॉलेज ही नहीं बल्कि जगत का हित या नॉलेज को अप्लाई करने के लिए अपना जीवन दांव में लगाते हैं या सब प्रकार के रिस्क को उठाते हैं। ये है वास्तव में ऋषि का परम लक्षण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की।